तप्त कंचन गौर अंगीरा देवृंदावनेश्वरी विश्वांशुके देवी प्रणामामि हरि हा देवी काकू हर भगवद दया सदाचा जाचे निपत्त भूमि दंडवत अंगश्यामिच्छटाभिरक्षतमन्दितचण्डीवरंजाजाबुदरूचिसांविदतमपट्टंवरक्षक्रियवृन्दारण्य निवासिनं हृदयशब्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं नायं गां भक्त्याभिज्ञापराधिरक्षितचित्तास्तुकामानि करुणं कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कलाये स्नाय कृष्णभक्ताय पदभक्तायं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतसुखं त्वयि पायिनो विरहकातरया सुभाव पुत्रीति तन्मयतया सर्वोभुने यदि किसी को ब्रज के भाव को पाने की लालसा है तो कृष्णचंद्र जी को कैसे स्मरण को कृष्ण काल पर लाए। पीत वसनधर आभरण मुनिवर मणिवर मयूर चंद्रिका करुकेश मृगमद चंदन कुमकुम विलेखन मोहन मूर्ति त्रिभुंग नवीन कुसुमावली श्री अंगे सुखय भाली मधुलोभे फिरे मत प्रिंग इत्यादि कृष्ण का वर्णन किया जो श्रीमद् भागवत इत्यादि में वर्णन किया। चरण कमल पर मणिमय नीतु नखमणि कलश पर चंद्र नुपुर मुरली ध्वनि कुलबधु मराली सुनिया रहित नर कृष्ण चंद्र का यह सुंदर वेश और श्रीमद्भागवत का उल्लेख है। श्रीमद्भागवत का भाव जब कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर के मुरली वादन करते हैं तो उसे सुन करके मरालिनी मैंने हंसी कुलबधू की मरालिनी घर में नहीं रहता। घर का तात्पर्य अपने घर में पति पुत्र पशु सासुरी माता पिता भाई बंधु इत्यादि के घर में वो नहीं रहता। यही ब्रज का भाव है। ब्रज में तो शांत दास्य सत्य बासल्य भी हैं। किसी चीज का अभाव लेने तो वो अपूर्ण हो जाएगा। ब्रज में सभी रस पूर्ण तो फिर रहने पर भी शांत रस का एकदम प्रकाश नहीं रह गया। दास्य शुद्ध दास्य भी वहां नहीं है। बासल्य सत्व का मिला हुआ और सख्य और बात्सल्य यहाँ पर है, किंतु ब्रजरस की सबसे बड़ी माधुरी गोपियों के भाव में ही नहीं है। यहाँ पर हम लोगों के जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं सब लोगों के उपास्य वही है, सभी का उपास्य करें। यहाँ कृष्णानुरागिनी जो गोपियां हैं उनके पतियों ने घर में बाधा दी और बाधाओं पर तनिक भी कान न दे करके, तनिक भी उसकी परवाह न करके वो कृष्ण से जाकर के मिली रास्ते प्रथम। इसीलिए यहाँ पर बतला रहे हैं ता बार ये वाना पति भी पितृ भी भातृ भी बंधु भी किंतु गोविंदा आत्मानु न अन्य वर्त, वो अपने पतियों के द्वारा निवारित कर जाने पर भी बाधा किए जाने पर भी पितृ भी उनके पिताओं ने उनको मना किया बाधा दी, उनके भाइयों ने उनके बाधा दिए, बंधुओं ने उनको बाधा दी मत जाओ। ऐसे ही गोविंद अपहृत आत्मा में कृष्ण ने उनका मन चोरी कर दिया तो सुने कैसे, इसलिए पतियों की बात नहीं सुनी क्योंकि मन ही चोरी कर दिया तो कान रह करके क्या सुनेगा, और पतियों की बात पिता की बात ससुर की बात सासुड़ी की बात बंधु और भाइयों की बात किसी की बात नहीं मानी नन्य वक्त। अतः तो जो कदम रख दिया था देहली के बाहर उसको फिर लौटा वो चली गई। इसलिए मालूम होता है ब्रज का भाव शुद्ध पार किए भाव, उन्होंने अपने पतियों को भी छोड़ दिया, बंधु भाई सब कुछ छोड़ दिया। श्रीमद्भागवत के इस श्लोक में और इस श्लोक के प्रमाणानुसार और बल्कि यही नहीं श्रीमद्भागवत के राजपंच अध्याय के और आगे के जो भ्रमर गीत इत्यादि में जितने भी श्लोक हैं सब एक ही माला के फूल जैसे गति हुए, एक ही तरह का अन्य भाव नहीं है। पति सुतान्मय भ्रातृबान अति विनते अंत अच्युता वहाँ पर गति विदस्तवो गीत मोहिता, सब जगह वो कृष्ण मोहित होकर के और उनके पास में चली गई अपने पत्नियों को छोड़ दिया। अंत में ये सब बतला रहे हैं इस सब प्रमाणों के अनुसार में ठाकुर महाशय जी जो कह रहे हैं, ठाकुर महाशय मैंने बंगाल में ठाकुर महाशय ही कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव सब लोग ठाकुर महाशय, दो ठाकुर महाशय, एक भक्त विनोद ठाकुर और ठाकुर माने, ठाकुर माने होता है ठाकुर जी, ये वैसे जैसे ये पूज्य है वैसे वो लोग भी पूज्य है, ये ठाकुर। यहाँ पर नुपुर मुरली ध्वनि कुलबध मरानिनी सुनिया रहते हैं नारे भरे, घर में नहीं रह पाती हूँ। इस त्रिपति के द्वारा यही जाना जाता है कि ब्रजांगनांगन जो है ब्रजंगना ब्रज अंगना अंगना माने स्त्री मान परभू और कृष्ण परपुरुष, परपुरुष का मतलब यहाँ पर ये स्वयं भगवान ऐसा नहीं, नर लीला के अनुसार में परपुरुष प्रकृत प्रस्ताव यथार्थ रूप में यदि ऐसा हो जब कृष्ण पर पुरुष है और गोपियां दूसरे की स्त्री है तो सब मर्यादा भंग हो जाएगी। कृष्ण ने कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि भूयो, धर्म की स्थापना करने आते हैं, धर्म को विकृत करने के लिए नहीं आते, तो ये धर्म की स्थापना नहीं होकर के लिए विकृत हो गया। फिर और भी कह रहे हैं कि यदि ऐसी बात हो तो सर्वनियंता श्री कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर है, धर्म मूलम ही भगवान, धर्म के मूल भी जो अधर्म के निवारक और धर्म के संस्थापक हैं, उनके उनकी जो लीला माधुरी है वो आत्माराम मुनियों के जो परम वंदनीय जो सुखदेव गोस्वामी हैं, इनके वंदनीय आत्माराम मुनि गणियों। आत्माराम कौन है सब? सनक सनंदन सनातन ये सब ये लोग हैं आत्माराम। सुखदेव गोस्वामी उनके वंदनीय हैं, वो इस श्रीमद्भागवत के कारण ही वंदनीय हैं। गोपियों की महिमा का गान किया है, इसलिए वो इन सब मुनियों के भी और नारद जी के भी परम वंदनीय हो गए हैं कि ऐसे चीज को उन्होंने किया। सुखदेव जी यदि ऐसी बात है तो वो सब उनकी भागवत में इन सब का वर्णन किया है। वैसे जो ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण पादारादि मर्शन जनित दोष संस्पर्श से चित पल तथा वो दूसरे स्त्रियों का संग कृष्ण ने किया, उसके साथ में बातचीत किया, अंगों का स्पर्श हुआ तो महाकलंकित हो जाएंगे ये कृष्ण। तो समस्त अवतारों के अवतारी स्वयं भगवान, धर्म के रक्षक, धर्म के संस्थापक कृष्ण, और उसको कलंकित करेंगे कौन? उद्धव जी, ये सुखदेव गोस्वामी जी। कौन सुखदेव गोस्वामी जी? जो आत्माराम मुनि गणियों के भी ऐसे बन गए, जो कि राजा कनक के दरबार में गए तो पहले द्वारी पर उनको रोक दिया गया, पहले दोड़ी के ऊपर, दोड़ी मैंने बहुत तरह से दरवाजा होता है, एक दो तीन चार पांच सप्तम जोड़ी अष्टम जोड़ी तक होता है, राजा का पहले जोड़ी में उनको रोक दिया, पांच दिन छह दिन उनको पूछा ही नहीं कौन है कहां से आए हैं, बस रोक दिया, कोई कैफियत नहीं पूछी पड़े। उसके बाद में दूसरी जोड़ी में उनको बुला करके लाया, पूछा कि किस लिए आए हैं, कहाँ जाएंगे, यहाँ पर कुछ पूछा, उन्होंने बताया कि मैं राजा जनक की सरकार में उनसे मिलने के लिए, दो तीन दिन उनको वहीं पर रोक दिया। इसके बाद में फिर तीसरी जोड़ी में आए, वहाँ पर उनको खातिर बात करने के लिए सब तरह तरह के ये सब वहाँ पर जो थे वो बड़े आदर के साथ में उनको गले में माला फूल चंदन सब दिया, उनको बड़े आदर के साथ में। और जब चतुर्थ में गए तो वहाँ पर देखा क्या, सब राजकुमारियों जैसे भी बड़ी परम सुंदरी सब तरह तरह से श्रृंगार किए हुए और उनको आगवानी करने के लिए उनका आरती उतार रहे हैं, उनको ले करके पकड़ करके धीरे धीरे ले जाए। लकड़ी है कि क्या है वो पहले वाला भी जैसे मान अपमान लकड़ी में जैसे कुछ नहीं होता, ऐसे ही पहले वाला भी अपमान भी कुछ नहीं हुआ, ये दिख रहा है संतों में ऐसे ही होता है, मान और अपमान दोनों का भी हम लोगों का तो कभी कभी होता है, सब जगह खूब सम्मान मिलता है और एक जगह कहीं अपमान किया तो मन खराब हो गया चल गई। भगवान का भजन इतना सरल नहीं है, बस थोड़ा सा अपमान और थोड़ा सा मान में ही बस चित्त खराब हो गया, वो भगवान ऐसा कर देंगे, थोड़ा सा पहले खूब सम्मान दिलवा देंगे और ऐसा गहरा अपमान दिला देंगे जो भाग करके त्राही त्राही करके ब्रज और मथुरा से निकल करके भाग जाएगा, पटली ट्रस्ट करा देंगे, पटली दस्त होती है ना खरा पानी दिलवा देंगे और ऐसा करेंगे एकदम लंबी खिंचकाई ऐसे निकल ले लेंगे, तराई तराई करके ये ब्रजमंडल और मथुरा मंडल से भागे वो आ नहीं सकते हैं, यहाँ जाएंगे वनों में घूमने के लिए तो वो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना पैरों वो ऐसे चिपक जाएंगे जो निकलेंगे भी और निकलेंगे भी तो वो टूट करके पैर में रह जाएंगे, झाड़ियों के कांटे कपड़े फाड़ डालेंगे और यहाँ की ऐसी गाली देंगे अरे हत्ते रे की बस मन खराब एक दिन में कहेंगे बर्तन मार राजकुमार बना रहे ऐसे ऐसे काम में लगा दे बस जल्दी से भाग जाएंगे, सहज ही नहीं ये सब में प्रवेश करेंगे। ये सब होने के बाद में जब गुरु जी की वैष्णव की सेवा करते करते अपने रगड़ देंगे अपने तन मन को, तब जाकर के ऋषि ऐसी दुर्लभ चीज जो ब्रह्मा इत्यादि के लिए, शंकर के लिए, नारद जी के लिए, उद्धव जी के लिए ये चीज है। और उसको हम लोग ऐसे ही रसगुल्ला जैसा नहीं लेना चाहते, ऐसा नहीं, जन्म जन्म कितने चले जाएंगे तब जाकर के ये सब। कहते हैं कि तब तो कृष्ण एकदम कलंकित हो जाते किंतु बात ऐसी नहीं हुई। अरुंधति, अरुंधति कौन है? वशिष्ठ जी की पत्नी है और अत्रि ऋषि की अनुसुईया। ये सब जो पतिव्रता हैं, ये जिनकी पवित्रता की आकांक्षा करती हैं, कामना करती हैं, किनके? ब्रज गोपियों की। और उन गोपियों में शिरोमणि हैं राधा जी, अरे जिनके लिए श्रुतियां, वेद की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं कौन है?
गोपाल।
ये ब्राह्मणी का रूप धारण करके तपस्या, ब्रह्म से ब्रह्माणी, ब्रह्माणी के रूप में जिसकी आकांक्षा करते हैं गोपियों का सुहाग, गोपियों जैसी सेवा कृष्ण की। और इसलिए लाखों कोटि बरस तक तपस्या आराधना कर रही है। तो अभी रोक दी गई, प्रवेश नहीं कर सकी, रोक दिया ना उनके पतियों ने, वही वो है जिनके भाव की प्राप्ति के लिए उद्धव महाशय, अरे वो भाव को तो बात दूर रहे, पहले भाव लाभ करना चाहते थे गोपियों का, फिर उनको प्रणाम करने की सोचा, फिर सोचा जैसे इनका प्रणाम नहीं कर सकते तो धूलि को प्रणाम करने की चेष्टा की, तो वो धूलि को भी प्रणाम नहीं किया, इसको प्रणाम किया, उस दिशा को प्रणाम किया जिस दिशा में ऐसी कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं। वो क्या है? जस्सा कदा विवसनां चलखेल अनुत्पन्नाति धनकोनेन कृतात्मा जोगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनों की तस्या नमस्तु विश्वानु। जिस दिशा में गोपियां हैं, श्रीमती राधिका हैं, उस दिशा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भूली की वंदना करना सहज नहीं। जब उद्धव जी ऐसा करें कि मैं भूली की वंदना करने योग्य नहीं हूँ, उसको अपने सिर पर धारण करने की तो बात बहुत दूर की बात। पहले उन्होंने वंदना की ना, मैं गोपियों की चरण की धूलि को प्राप्त करने के लिए वृंदावन में करुलता गुण होना चाहता हूँ। अभी इतनी बड़ी भारी चीज उनके चरण की धूलि को मैं अपने सिर पर रख लूं, ये संभव पर नहीं। फिर बंदे गोपियों की चरण की धूलि की मैं वंदना करता हूँ, स्पर्श नहीं। फिर वंदना करने में गए तो उस राज्य से इसकी वंदना करने भी योग्य नहीं, मैं इतना अयोग्य हूँ। मैं उस दिशा को वंदना करता हूँ जिसमें गोपियों की चरण की धूलि, ऐसे ऐसे महापुरुष। तो ऐसे आत्माराम के चूड़ामणि स्वरूप सुखदेव गोस्वामी जी, जिनके अनुराग विलसित लीला समूहों को तन्मय होकर के कीर्तन जिन्होंने किया है, और परीक्षित महाराज जी के मरते समय में कहा, इसलिए पवित्रता की संभावना कहाँ हो सकती है? मरते समय कोई कोई चीज को अपवित्र चीज वहां पर नहीं कर सकता, वहाँ पर तो हरिनाम सुनाएंगे या पवित्र रूप में गोदान करेंगे, गोबर से लिप्त होते देंगे, पवित्र भाव से जाएंगे, अपवित्रता का प्रश्न। अब मरते समय में ऐसी कुत्सित बातें उनको सुनाते यदि ये खराब बुरी बात होती, इसलिए धार्मिक परीक्षित महाराज को मरते समय में, अंतिम समय में, परलोक के समय में प्रेम विलसित लीला सुनाया। और परीक्षित महाराज ने अपनी मैया को जिस भावना के लिए उपदेश दिया, क्या भावना से उपदेश? मैया तू गोपियों की तरह मैं कृष्ण के चरणों की चिंता, कितना निर्लज्ज होकर के भी ये बात नहीं कहे, तो अब मर रहा हूं कौन कहेगा? इस करके मैया को ये बताना, यदि अनुराग करना है कृष्ण को, अब छोड़ो लज्जा भ्रम, ये हमारे वो ससुर जैसे थे और ये वो ससुर अर्जुन इत्यादि की भांति हमारे हैं, ये सब छोड़ो, गोमियों जैसा अनुराग उनके चलो। इसलिए ब्रजांगनाओं का यह भाव कभी भी व्यभिचारिणी नहीं हो सकता है, निंदा का भाजन नहीं हो सकता है। यदि ऐसी बात हो जाती तो सब चपट हो जाता है, किंतु आजकल के बहुत से विद्वान लोग ऐसा करते हैं। बंकिम चंद्र भी बोले, मैं महाभारत को के कृष्ण है उनको मानता हूँ, ब्रज के कृष्ण को मैं नहीं मानता हूँ जिनकी कथा भागवत में लिखी गई। हमारे मथुरा में दयानंद सरस्वती रहते थे, उन्होंने भी ऐसा कहा, मैं श्रीमद् भागवत को नहीं मानता, भागवत के महाविरोधी। ऐसे ही आधुनिक जगत के जो ऐसे लोग हैं वो भागवत को नहीं समझते, उसको किसी रूप में ग्रहण किया, उनकी तो बात क्या। मुह्यंति जत सूरयः, सूर्या मैंने मुक्त पुरुष भी मुह्यंति मोहित हो जाते, ब्रह्मा इत्यादि तो कृष्ण के गोचारण लीला को देखकर के ही मोहित हो गए, उनकी मुक्ति देव दान कर दी, अगासुर को इसी में मोहित हो गए, ये कैसे पात्री को उन्होंने ऐसी मुक्ति दे डाली। तो हम लोगों को या ऐसे भाव वाली मातृभाव वाली जो गोपियां उनको क्या दें, विष्णु तरह तो और की बात क्या। इसलिए कहते हैं कि ये सब जो लीलाएं हैं हम लोगों के संप्रदाय में भी एक भ्रांत धारणा आई। भ्रांत धारणा ये पीछे बतलाता हूं, अभी प्रसंग से चलता हूं। इसलिए ये बतला रहे हैं कृष्ण की जो लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है राशि इत्यादि के संबंध में, वो कभी भी किसी तरह से काम हेतु तो नहीं है, अव्यभिचार है, हम लोग का हृदय व्यभिचार है, इसलिए ऐसा समझते हैं। परम सुंदर एक भाई अपनी परम सुंदरी बहन के साथ में कहीं जा रहा है एक रिक्शे से कहीं उसको पहुंचाने के लिए, लोग उसको किस रूप में देखेंगे, रही भावनाएं जाकर जैसी हर मुहूर्त देखा, वो लोग कहेंगे देखो ये बदमाश है इस लड़की को भगा करके ले जा, यही तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे, ऐसा ही कहेंगे। आजकल की जैसी भाई अपनी बुरी भावनाओं का आरोप कर नहीं समझेंगे कि पवित्र भाई और बहन दोनों बैठे हैं। ऐसे ही बहुत सी चीजें होती हैं जो आदमी नहीं समझता, तो ये कृष्ण के चिन्मय भाव को लोग कैसे साधारण रूप में पहुंच समझेंगे। वेद शास्त्र में जिनको कृष्णो वही परम दैवतम वेद में गोपाल का आपने बताया, कृष्णो वही वही मैंने निश्चित रूप से, इसमें शंका मत करना, जो शंका करेगा उसका विनाश हो जाएगा, इसलिए वही परम दैवतम कृष्ण ही परम देवता है। भागवत में लिखा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और जितने भी अवतार हैं 24 लीला अवतारों का वर्णन करने के बाद उन्होंने बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो इसमें ब्रह्म संहिता में बताया अनादिरादि गोविंद सर्व कारण, समस्त कारणों के कारण, यहाँ तक कि जितने अवतार इत्यादि हैं उन सब का कारण ये कृष्ण। ये गोपियां उनकी अपनी शक्ति है, गोप जना विद्या कला प्रेरका, समस्त शास्त्र गोपाल का अपनी का है, गोप जना विद्या, ये गोपियां क्या है, ये विद्या स्वरूप, कैसी विद्या स्वरूप ने, कला प्रेरक, कला प्रेरका माने की कला माने होता है निज रूपतया कला भी है शक्ति स्वरूप, जैसे कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय ऐसे ये सब गोपियां भी सच्चिदानंदमय हम लोग। सवो ही स्वामी भवती, गोपाल तो आपने मेन बतला दिया। कृष्ण निश्चित रूप से उनके स्वामी हैं ऐसा बतला दिया। ये बतला रहे हैं अभी जीव गोस्वामी का उदाहरण देकर, सब जीव गोस्वामी का ये सब देव पाद न्यासई इत्यादि श्लोक में कृष्ण बद्ध गोपियां कृष्ण के विरह में तन्मय होकर के कृष्ण लीलाओं का चिंतन करती हुई पादन्यासई कृष्ण जैसे पद से नित्य कर रहे हैं, चल रहे थे जैसे उनके साथ में नाच रहे हैं, उनके श्वेत बिंदु पूछ रहे हैं, जो जो अभिनय कर रहे ठीक ऐसे ही वो करने लगे।
कृष्ण वहां पर बताया,
इसलिए वहां पर बतलाया कृष्ण बधवा। बधु किसको कहते हैं? वर और तो गोपियों को यहाँ पर बधु बताया। अनेक जन्म सिद्धानाम गोपी नाम पति देव होगा गौतमीय संसद, ये सब प्रमाणिक ग्रंथ है। अनेक जन्म सिद्धानाम, अनेक जन्मों के बाद भी जो सिद्ध होने वाली हैं गोपियों के भाव से पति देव होगा, कृष्ण को पति के रूप में नहीं होता। आनंद चिन्मय रस पति भाविता भी ताभी एवं निज रूप तया कला भी, निज रूप तया कला भी है, जैसे कृष्ण का रूप है ना सत्य आनंद स्वरूप है, कभी माया में बद्ध नहीं होते, उनका श्री अंग किसी भी माया के द्वारा निर्मित नहीं है, कला भी शक्ति भी शक्ति।
वैदिक मंत्र द्वारा जहर पानी ग्रहण कराने बोला है बोलते
वही उसी का उत्तर इत्यादि। कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी ने इस सब का लिया है, वहां पर गौण रूप से है उन्होंने बताया। विश्वनाथ चक्रवर्ति ठाकुर जी ने वधु में जो गुण होते हैं वो सब गुण में इसलिए वधु का इत्यादि स्थलों में नंदनंदन श्री कृष्ण को ही कृष्ण का निज शक्ति प्रेयसी इत्यादि के रूप में वर्णन किया गया है। बृहद गौतमीय तंत्र में श्रीमती राधिका जी के लिए सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा यह बतलाया गया है। श्लोक क्या है?
देवी कृष्णमयी
देवी, यह सब को याद रखना,
कृष्णमयी भक्ता राधिका प्रति
यह सब भक्ति सब श्लोकों को याद रखना पूरी रूप में। देवी कृष्णमयी भक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांता सम्मोहिनी परा, इसलिए सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी कृष्ण को भी मोहन करने वाली ये श्रीमती राधिका जी हैं। परा माने सबसे श्रेष्ठ हैं और प्रकृति से श्रेष्ठ। ऋख परिशिष्ट में भी कहा गया है राधया माधवो देवो माधवेन एव राधिका विभ्राजन्ते जनेश्वर, राधा के साथ में माधव विहार करते हैं और माधव के साथ में राधा जी अशेष रूप से सुशोभित होती हैं। सर्वशक्ति के मूल आश्रय आद्याशक्ति श्रीमती राधिका वृंदावन में एक श्लोक और भी देते हैं स्कंद पुराण में वाराणस्या वाराणसी में विशालाक्षी। विशालाक्षी कौन है? बिंदु माधव वहां पर है, हाँ वहीं पर बिंदु माधव जी, नहीं नहीं बिंदु माधव गणी माधव से वहां पर है
प्रयाग
में, यहाँ पर भगवान जहाँ भगवान नहीं रहेंगे वहां पर ईशान कोण में ईशान नहीं रह सकते, ये समझ लो। जहाँ भी कोई मंदिर है शंकर जी का वहां पर विष्णु रूप में उनके आराध्य देव रूप है। इस वहां पर होते होते हो गया जैसे वो शंकर जी की प्रतिष्ठा बढ़ गई आगे
और उनको छोड़ दिया। उसमें जिस समय में मंदिर तोड़ा गया था विश्वनाथ का, उसके पहले ही इस मंदिर को बिंदु माधव पर को पहले उन्होंने तोड़ा। वहाँ पर विशालाक्षी है, विशाल अक्षी भी लक्ष्मी जी, हम लोग गए थे उस स्थान देकर के आए। और विमला पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम में
शक्ति
विमला जी, और रुक्मिणी द्वारावंत द्वारकापुर में रुक्मिणी जी, और वृंदावने बने
राधा
वृंदावन, राधा जी वृंदावन में कृष्ण की क्रिया के रूप में। इसलिए राधा जी ब्रजंगन इत्यादि जो हैं वो कृष्ण की अपनी शक्ति, स्वयं शक्ति और नित्य प्रियसी हैं। कृष्ण उनके नित्य कांत हैं। इसमें गोलोक में ब्रजंगना गमसा कृष्ण नित्य विहार करते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। ब्रह्म संहिता में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस श्लोक की बहुत मार्मिक टीका की है, बहुत ही सुंदर। इस टीका को अच्छी तरह से हमने तो उस अपनी आलोचना की थी, क्योंकि बार बार करने से सब याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, आनंद चिन्मय रस क्या है? ब्रज रस है। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो रस है यही आनंद चिन्मय रस है, जिसमें कृष्ण जो परम भगवान है स्वयं भाव उनको भी लेकर के रसिक शेखर को भी उसके द्वारा परिभावित ये सब गोपियां हैं, उनका चित्त इंद्रिय काय सब कुछ उसी के द्वारा बना हुआ है। इसको कहते हैं भाविता भी प्रतिभाविता भी। जैसे बताया गया रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वो स्नान उनका अंगराज इत्यादि सब जो बतलाया गया यही प्रतिभाविता भी। अर्थात कृष्ण के प्रेम रस ही के द्वारा उनके सब अंगों का निर्माण हुआ, ये प्रतिभाविता भी। अर्थात प्रेम सार महाभाव, महाभाव स्वरूपनी श्री राधा ठाकुरानी कृष्ण कांताश्रुमणि, अरे उनके जितने भी इंद्रिय हैं वो सब कृष्ण प्रेम से बने हुए महाभाव के द्वारा बने हुए। ये गोलोक में एवं निखिल निवसत अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम, गोलोक में सब समय नित्य निरंतर वास करते हैं जो ऐसे प्रशिक्षित कर कृष्ण के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। रक्षित कर श्री कृष्ण गोलोक में नित्य विहार कर। यहाँ पर इस ग्रंथ में कुछ भूल दिया गया, चैतन्य चैतामृत इत्यादि में हम देखते हैं लिखा गया ये कृष्ण लोक तीन प्रकार के हैं। पहले हुआ बैकुंठ, बैकुंठ के ऊपरी भाग का नाम कृष्ण लोक। यह लोक तीन भागों में विभक्त है, कौन कौन सा?
द्वारका, मथुरा।
पहले तो गोलोक, गोलोक के ऊपर में तीन लोक, द्वारका मथुरा और वृंदावन। और उसी के लिए बतलाया गया तीन लोक जो हैं गोकुल वृंदावन श्वेत दीपना, गोकुल माने वो जो अंतिम है द्वारका के और मथुरा के ऊपर भी, उसका नाम है ब्रज। इस ब्रज के नाम तीन हैं गोकुल श्वेत द्वीप और वृंदावन, इसके तीन नाम। कहाँ पर है? गोलोक के ऊपर में ये तीन चीजें। अब कहते हैं ये जो पार की अभाव युक्त जो भी बतलाया है जिसके द्वारा कृष्ण साधन करने के लिए इस ब्रज में आए। कुछ लोगों की धारणा है
ब्रज उस स्थान का नाम है जहाँ पर श्री कृष्ण कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आकर के और लीलाएं करते हैं, राश इत्यादि करते हैं। ऊपर में जो है उसका नाम है गोलोक, और जब वही स्थान यहाँ पर आप उतरता है तो उसका नाम है ब्रज। किंतु यह भ्रांत धारणा, अत्यंत भ्रांत धारणा। गोलोक में ही, गोलोक के निवृत्त भक्ति विनोद ठाकुर जी का था, जरा चैतन्य चरितामृत ले आओ तो हमारे हमारे खाट पर रखा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वहां पर ही ब्रजधाम है अप्रकट, उसी को गोलोक भी कहते हैं। श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप इसलिए कहते हैं इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु जी की लीला वहां पर है, इसलिए उसको बतला रहे हैं। कहते हैं कि प्रकृति के पार, प्रकृति के उस पार, प्रकृति के पार माने प्रकृति, ये 14 लोक हुए, इसमें व्याहृतियां हैं, 14 व्याहृति, पूर्व असम तपसत्य तल तलातल राष्ट्रातल पाताल इत्यादि, ये 14 कुंड। इनके ऊपर में और 8 आवरण हैं प्रकृति के, कौन कौन 8, ये 5, ये चितजल समी, 5 ये मन बुद्धि अहंकार, मैंने वहां पर मन बुद्धि चित्त वाला, उसी का मोहिनी वहां पर रहती। इन 8 आवरणों को भी पार करके तब प्रकृति के उस पार में पर व्योमना, प्रकृति के पार पर व्योमना में धाम, कृष्ण विग्रह जैसे विभूति आदि गुणमान, जैसे कृष्ण का शरीर चिन्मय है, लाखों रूप धारण कर सकते हैं, ऐसे ये जो धाम है ये भी लाखों स्वरूप धारण करता है और लाखों भूमंडलों में ये उतरता है, अवतार लेता है। लाखों ब्रह्मांड है, लाखों ब्रह्मांड में जैसे कृष्ण आते हैं अपने धाम के साथ, स्वीय धाम सह सर्व, सर्व माने सर्वत्र गमन करने वाले, अनंत एक दो नहीं अनंत, विभु कृष्ण जैसे विभु है, व्यापक है ऐसे विभु, वैकुंठादि धाम, वैकुंठादि धाम जो है ऐसे ये भी हैं। कृष्ण कृष्ण अवतारे तहां ये विश्राम पर, और उसके ऊपरी भागे कृष्ण लोक ख्याति, ये जो वैकुंठ लोक है उसके ऊपर में कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविध है स्थिति। कृष्ण लोक कौन कौन, द्वारका मथुरा और ब्रजलोक, गोकुल सर्वपरी गोकुल, ये जो गोकुल है ना द्वारका मथुरा इनसे भी ऊपर में है सर्वपरी गोकुल, ब्रजलोक धाम जिसको ब्रजलोक कहते हैं। ये ब्रज और ये ब्रज अलग नहीं, तो वहां प्रभु ब्रज हुआ और उस ब्रज का नाम है श्री गोलोक श्वेत दिन वृंदावन नाम, उसी का नाम है गोलोक, उसी गोकुल का श्वेत दिन वृंदावन, अर्थात गोलोक एज ए होल और उसका हृदय स्वरूप जो है सार उसके अंदर में, ये हुआ गोकुल या वृंदावन अथवा श्री। इसलिए ऊपर भाग में भी ये ब्रज अथवा वृंदावन है, केवल वहां से गोलोक जब यहाँ आता है यहाँ पर लीला होती है तभी उसका नाम ब्रज होगा, ऐसा नहीं, यह धूल है। और भी भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं देखो खूब अच्छी तरह से समझना, पांच रस बतलाए, स्थाई रस, सात गौण रस बतलाए,
ये सब और सब रसों की अपेक्षा श्रृंगार रस की माधुरी अधिक है। श्रृंगार रस माने अभी गोपियों के साथ में कृष्ण का जो रास इत्यादि हुआ जिस भावना से परप्रिय भाव से अपने पतियों को छोड़कर के कृष्ण रूपी प्रकृति के पास में गई, इसको मधुर रस कहा। इस मधुर रस में रस की दो प्रकार से स्थिति है। यह रस दो प्रकार का स्वकीय और कृष्ण को वैदिक रीति से विवाह का नाम जो पति ज्ञान से होता है उसमें स्वकीय मधुर रस, अर्थात वेद विधि के द्वारा बंधन के द्वारा जो विवाह इत्यादि यह स्वकीय स्वकीय मधुर रस हो। कृष्ण को उपपति ज्ञान से उपपति ज्ञान से मधुर रस उदित उनको पार किया। कृष्ण उनके अपने हैं किंतु जब उनमें ही ऐसा भाव उत्पन्न होता है पर पुरुष का भाव तो उसको पार किया। कृष्ण अपने हैं और उनमें स्वकीय बोध होता है अपना पति जैसा उसको, दोनों जगह में अपने ही हैं। कृष्ण दूसरे नहीं है इस भाव को समझ, किंतु भाव हो जाता है ये भाव होता है योग माया के द्वारा कुछ कृष्ण को रसास्वादन कराने की। इसलिए मधुर रस पर विचार करने वाले रूप सनातन इत्यादि रघुनाथ दास गोस्वामी और हमारे जो महाजन गुरु हैं इसके पहले जयदेव गोस्वामी जी, उसके पहले भरत, उसके और भी हमारे बिल्ल मंगल इत्यादि, इन सब जो विचारक हैं सिद्धांत ऐसा किया पारकीय भाव से मधुर रस का उल्लास अधिक है। चैतन्य चैतामृत में भी ये बतलाया गया। ब्रज बिना यहाँ नहीं कोई दूसरा जगह नहीं, ब्रज छोड़ करके और इसका कहीं भी बात नहीं। ब्रज की ब्रज बिना नहीं था अन्यत्र बात फर्क या भाव अति रसर उल्लास ब्रज बिना यह अन्यत्र नहीं बात। ब्रज छोड़ करके और कहीं भी ये भाव नहीं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, अनेक माने अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं, जितने विशेष करके ये सहजिया लोग वो समझते हैं कि कृष्ण नित्य गोलोक विहारी हैं, गोलोक में नित्य काल विहार करते हैं, स्वल्प काल के लिए कुछ काल के लिए आते हैं और ब्रज में उनकी लीला उदित होती है, वहीं पर पार्थिव भाव आता है। स्वल्प भाव माने स्वल्प काल के लिए मैंने थोड़े समय के, एक समय ब्रह्मा जी और इंद्रद्युम्न महाराज पूरी में क्या माधव नील माधव उनका दर्शन करने की इच्छा हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुमको मैं जग दिखला लो। ब्रह्मा जी उनको लेकर के गए श्वेत द्वीप में या कहां गए और वहां उनको देखा माधव जी खुश दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि आप पधारिए, आप वहां से चले आए हैं, हम आए हैं आपको ले चलने। इंद्रदेव ने कहा, उन्होंने कहा कि इस समय मैं नहीं जाऊंगा, हमारी तीन मूर्तियां होकर के चार मूर्तियां वहां पर जाएंगी। मैं जगन्नाथ बलदेव प्रभु सुभद्रा और चक्र सुदर्शन ये चार रूपों में हम वहां पर जाएंगे और वो काष्ठमयी से विग्रह है किंतु हम ही हैं, वो हमारा नील माधव विग्रह ही वो चार रूपों में प्रकट है। तुम जाओ कोई चिंता मत करो, हम तुमको उसी रूप में दर्शन, किंतु जाएगा ना वहां पर सब कुछ बदल जाएगा। यहां जब आए तब तक जुग जी गांतर कितने व्यतीत हो गए हैं, वो ब्रह्मांड ही नहीं था पहले बार, वो भी बदल गया, सब राजवाड़े बदल गए हैं, पृथ्वी बदल गई है, सब कुछ माने एकदम बदल गया। उस समय का कोई आदमी नहीं था। तो जब यहाँ आने में इतने युग युगांतर बदल सकते हैं, तो वहां की लीला यदि यहाँ पर आएगी, एक सेकंड की लीला वहां की हुई, तो यहाँ के लिए कितना 125 वर्ष होना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ की 125 वर्ष की लीला जो अभी हम लोग का 125 वर्ष की आयु नहीं है, 50, 60, 70, 80 बड़ी मुश्किल से 80 के बाद में जाते हैं, एकदम कैसे हो जाते हैं 80 वर्ष के बाद में, 90 होते होते सब सब कुछ ढीला हो जाता है, बोलतू तोड़तू सब खुल जाता है, सब कुछ ढीला ढाला हो जाता है। कहते हैं हे प्रभु आप जल्दी से ले चलिए, 125 वर्ष में तो न जाने क्या हो जाए। तो 125 वर्ष की लीला वहां की लीला का एक सेकंड का लाख भाग भी नहीं है, किंतु यहां पर 125 वर्ष की लीला हो गई। इसलिए कहते हैं कि स्वल्प काल के लिए वो लीला यहां पर आई। अब जब लीला यहां पर अवतरित हो, उसमें मधुर रस की जो लीला हुई वो ब्रज की लीला हुई, कितनी यहां जगत की दृष्टि